नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। कुरियर पैकेज डिलीवरी कंपनी DHL सप्लाई चेन ने दिल्ली और मुंबई सहित 3 नए शहरों में अपने भारत पूर्ति नेटवर्क का विस्तार करने की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी सुविधाओं के माध्यम से क्षमता निर्माण में कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी ने अपना पहला पूर्ति नेटवर्क पिछले साल सितंबर में बेंगलुरु में शुरू किया था। कंपनी ने कहा कि IFN एक समन्वित पेशकश है जो पूरे भारत में ई कॉमर्स ऑर्डर को तेजी से मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। भारत में ई कॉमर्स बाजार 2022 के अंत तक 74.8 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। 2025 तक बाजार के लगभग 35% बढ़कर 188 अरब डॉलर होने का अनुमान है। कंपनी के अनुसार वर्तमान में DHL भारत में अपने ई कॉमर्स संचालन से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक ऑर्डर पहुंचाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बुधवार को कहा कि वह कर्ज में डूबे श्रीलंका के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रखेगा ताकि नई सरकार बनने के बाद नीतिगत चर्चा शुरू की जा सके। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी के बाद से सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस वजह से उसे राजनीतिक अस्थिरता का सामना भी करना पड़ रहा है। कोलंबो गजट न्यूज पोर्टल ने बताया कि IMF ने कहा है कि वह अपनी नीतियों के अनुरूप श्रीलंका की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट में IMF के हवाले से बताया गया कि श्रीलंका के साथ तकनीकी स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है और नई सरकार बनने के बाद नीतिगत चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। IMF ने एक बयान में कहा, अभी 9 से 23 मई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकनीकी स्तर पर चर्चा शुरू हुई और ये चर्चा तय योजना के अनुसार जारी है ताकि नई सरकार बनने के बाद नीतिगत चर्चा की पूरी तैयारी रहे। IMF ने ये भी कहा कि वह श्रीलंका के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है और बढ़ते सामाजिक तनाव और हिंसा को लेकर चिंतित है। इससे पहले अप्रैल में दोनों पक्षों ने वॉशिंगटन स्थित IMF मुख्यालय में पहले दौर की वार्ता की थी। खुदरा विक्रेता मार्क्स एंड स्पेंसर इंडिया ने बुधवार को कहा कि रितेश मिश्रा को मार्क्स एंड स्पेंसर रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मिश्रा इससे पहले संचालन और संपत्ति के प्रमुख थे और वह जेम्स मुनसन की जगह लेंगे। मुनसन अब ब्रिटेन में M&S के अंतर्राष्ट्रीय खुदरा निदेशक की भूमिका निभाएंगे। मिश्रा अपनी नई भूमिका में मुनसन के प्रति जवाबदेह होंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को बताया कि उसने राज्य में बांस की खेती और विकास के लिए क्रेडियस तथा हाइडल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU पर दस्तखत किए हैं। एक अधिकारी ने दावा किया कि यह बांस की खेती के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। इस समझौते के तहत 1 लाख हेक्टेयर वन और गाँव की जमीन पर बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। बांस को अरुणाचल प्रदेश में हरा सोना भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश बांस संसाधन और विकास एजेंसी ने यहां आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार की ओर से MOU पर हस्ताक्षर किए। क्रेडियस के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र सिंह राव ने कहा कि इस समझौते के जरिए 10 वर्षों में 10 करोड़ कार्बन क्रेडिट की खेती की जाएगी जिसकी कीमत इस अवधि में 1.5 अरब डॉलर होगी। ऊंची कीमतों के कारण वैश्विक मांग में कमी के चलते भारत से अप्रैल के दौरान सोया खली का निर्यात करीब 65% घटकर महज 40,000 टन रह गया। अप्रैल 2021 में देश में 1.15 लाख टन सोया खली का निर्यात किया गया था। इंदौर स्थित संगठन सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। सोपा के कार्यकारी निदेशक DN पाठक ने PTI भाषा को बताया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोया खली के भाव अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना के इस उत्पाद के मुकाबले लंबे समय से ऊंचे बने हुए हैं। भारतीय सोया खली की मांग में जारी गिरावट का सबसे प्रमुख कारण यही है। गौरतलब है कि अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादकों के रूप में होती है। प्रसंस्करण संयंत्रों में सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचने वाले उत्पाद को सोया खली कहते हैं। ये उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। इसे सोया आटा और सोया बड़ी जैसी खाद्य पदार्थों के साथ पशु आहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है। कोविड 19 महामारी के बाद भारत पश्चिम एशिया क्षेत्र के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत भरोसा कायम करने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर बराड ने मंगलवार को अरब ट्रैवल मार्ट के दौरान मीडिया से बात करते हुए बात कही। अरब ट्रैवल मार्ट की शुरुआत 9 मई को हुई थी। उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिहाज से पश्चिम एशिया भारत के प्रमुख लक्षित बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत उन कठिनाइयों को कम करने की कोशिश कर रहा है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण पर्यटकों के लिए पैदा हुई थी और जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया से बड़ी संख्या में पर्यटक चिकित्सा, खुशहाली, लग्जरी पर्यटन के लिए भारत आते हैं और सरकार मध्य पूर्व के बाजार में भारतीय पर्यटन को समग्र रूप से बढ़ावा दे रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।